गुरु भक्ति योग। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप अधिक सच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा एवं उसमें धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। उसे चुस्तता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि हैं। शिष्य को सब सुख वैभव का विष की तरह त्याग कर देना चाहिए और अपना शरीर गुरु के सेवा में सौंप देना चाहिए। ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य पूरे हृदय से अपने आचार्य की सेवा करना है। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी निजी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जितना सहाय रूप है उतना सहाय रूप तप, यात्रा, भेंट, दान आदि नहीं है। कल हमने सुना कि धर्मदास जी कबीर जी से कहते हैं कि प्रभु मुझे शिष्य बनाकर ज्ञान उपदेश दीजिए। तब कबीर जी ने कहा, प्रथम आप अपने गुरु से प्रार्थना करें, यदि वहां से उपदेश नहीं मिला तो मैं अवश्य उपदेश दूंगा। धर्मदास जी ने फिर पूछा, इस दास को फिर दर्शन कब दोगे? कबीर जी कहते हैं, संतों के बीच मेरी खोज करें, वही मेरे दर्शन होंगे। धर्मदास जी अपने गुरु के पास गए और उनका पूजन कर प्रश्न किया कि प्रभु परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वह उसे कैसे पाए? ऐसा गूढ़ प्रश्न सुन महात्मा रूपदास जी ने कहा कि आपका प्रश्न अति उत्तम है, किंतु इस प्रकार के आत्मज्ञान की प्रक्रिया जानने वाले महान समर्थ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। पूर्व पुण्य के उदय से ही ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष के दर्शन होते हैं। जिन महापुरुष ने आपको यह उपदेश दिया है, आत्म कल्याण के लिए आप उन्हीं की शरण में जाएं। गुरु सम्मति पाकर धर्मदास जी प्रसन्न हुए। अब वे सद्गुरु कबीर जी के दर्शन पाने की उत्कंठा से साधु संतों की सेवा में मग्न हो गए। एक दिन उन्होंने पत्नी से कहा, संत कबीर जी सदैव साधु संतों में विराजते हैं, यदि हम संत सम्मेलन करें तो वे अवश्य पधारेंगे। सम्मेलन की तैयारी हुई और संत महात्मा, विद्वान व भक्तजन उपस्थित हुए। इस सुंदर आयोजन से भी सभी प्रसन्न हुए, पर धर्मदास जी को कबीर जी के दर्शन न हुए। वे हर व्यक्ति से पूछते कि आपने कहीं कबीर साहब के दर्शन किए हैं? संत सम्मेलन करके भी कबीर जी के दर्शन न होने से धर्मदास जी व्याकुल हो उठे। सच्चे भक्त के हृदय से निकली पुकार आत्मनिष्ठ महापुरुष के हृदय तक तत्काल पहुंचती है। वह देरी व दूरी कुछ नहीं होती। कबीर जी से अपने अनन्य भक्त की वेदना सही नहीं गई। वे धर्मदास जी के आंगन में आ गए। फिर गुरु पूजन व ज्ञान विषय प्रश्नोत्तर हुए। धर्मदास जी की सेवा से प्रसन्न हो कबीर जी बहुत दिन तक वही रहे। एक दिन धर्मदास जी ने कबीर जी से मोक्ष के सुगम उपाय का उपदेश देने की प्रार्थना की। उनकी उत्तम जिज्ञासा व धर्माचरण से प्रसन्न होकर कबीर जी ने उन्हें साधु वेश प्रदान कर उपदेश दिया। श्वास श्वास में नाम उच्चारण पूर्वक भगवत स्मृति की एक तांता को स्मरण कहा जाता है, इसका अभ्यास करो। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास को आवन होए न होए। जीवन यौवन सत्ता या द्रव्य स्थिर नहीं है। सत्संग में बीता समय ही जीवन का महान फल है। जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हे धर्मदास जी, जैसे बाजीगर का लड़का अपने शरीर पर विषधर नाग को लपेटकर फिरता है परंतु सर्प विष उसको व्याप्त नहीं होता, क्योंकि उसने गुरु यानी बाजीगर से मंत्र तथा औषधि सीखी होती है, वैसे ही क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु रूप बाजीगर से उपदिष्ट शिष्य को संसार में रहते हुए भी विषय विष व्याप्त नहीं होता, क्योंकि वह भी गुरु के उपदेश से सांसारिक विषयों को मिथ्या समझता है। पृथ्वी जल तेज वायु व आकाश इन पांच तत्वों से निर्मित शरीर के भीतर गुप्त वस्तु परमात्मा का स्थान है। उसका भेद गुरु के उपदेश से कोई विरला ही जानता है। पांच तत्व से भीतरे गुप्त वस्तु अस्थान, विरले मर्म कोई पाइए गुरु के शब्द प्रमाण। फिर कबीर जी ने उन्हें जीव ब्रह्म एक का ज्ञान, परमात्मा का सम्यक ज्ञान, इंद्रिय निग्रह करने की विधि और आत्म तत्व का रहस्य बताया। इस प्रकार लंबे समय तक धर्मदास जी को नित्य कबीर जी का सत्संग लाभ मिलता रहा। सत्संग सुनकर धर्मदास जी शांत भाव से उसका मनन करते, आंखें खोलने के बाद कृतकृत्य हो अपने सद्गुरु की स्तुति करते। एक दिन धर्मदास जी का समर्पण पराकाष्ठा पर पहुंचा। वे गुरु चरणों में गिरकर बोले कि हे नाथ, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में शरीर मन वाणी सहित अपना सर्वस्व आपके चरण कमलों में अर्पण करता हूं। धर्मदास जी की उत्तम भक्ति सेवा जिज्ञासा व पूर्ण समर्पण देखकर सद्गुरु कबीर जी ने पूर्ण गुरु कृपा बरसाई और धर्मदास जी आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। गुरु आज्ञा से धर्मदास जी निर्लेप होकर लोक मांगल्य के कार्यों में लगे रहे। समय पाकर अपने सुपुत्र श्री मुक्तामणि नाम को अपना सर्व कार्यभार सौंपकर वे अपने सद्गुरु सहित जगन्नाथपुरी गए। वहां ज्ञान चर्चा तथा आत्म सुख में रमण करते हुए धर्मदास जी ने नश्वर शरीर का परित्याग किया।